اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے قلندر شعور اور صفحہ نمبر ہے 79 اور ٹاپک ہے گاؤں میں مرغ پلاؤ. یہ سارا چیپٹر چونکہ استغنا کے ذیل میں ہے، استغنا کے بارے میں ہے، اور استغنا کے حوالے سے مختلف زاویوں سے حضور مرشد کریم نے یہ بات ہمارے گوش گزار کی ہے یا ہمارے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ استغنا سے کیا مراد ہے، کہ کس طرح سے بندہ جب ذہن کو اللہ کے ساتھ سنکرونائز کر کے اس کے سسٹم پہ غور و فکر کرتا ہوا اس کے مطابق چلتا ہے، تو اس کے اندر کی جو کیفیات ہیں وہ کس طرح سے اس کے باہر کے معاملات کو درست کرتی چلی جاتی ہیں. تو اس میں یہ آج کا ٹاپک ہے گاؤں میں مرغ پلاؤ. استغنا کے ضمن میں غوث علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پتی اپنی تصنیف تذکرہ غوثیہ میں ایک دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں ایک دیہات کی مسجد میں امام تھا. مسجد میں ایک فقیر آ کر رک گیا. مغرب کے بعد میں نے اسے کھانے کے لیے بلایا تو اس فقیر نے پوچھا کھانے میں کیا ہے. اتفاق سے اس روز دال روٹی تھی. فقیر نے یہ بات سن کر کہ دال روٹی ہے کوئی خاص توجہ نہیں دی اور خاموش ہو گیا. میں نے دوبارہ کھانے کے لیے اصرار کیا تو بولا میرا اللہ سے یہ معاہدہ ہے کہ اگر وہ مجھے مرغ پلاؤ دیتا ہے تو میں کھا لیتا ہوں ورنہ نہیں کھاتا. فرماتے ہیں میں نے یہ سمجھ کر کہ یہ نفسیاتی مریض ہے اس کے لیے کھانا بچا کر رکھ دیا. برسات کا موسم تھا، آسمان پر گھٹا چھائی ہوئی تھی. میں اپنے حجرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ موسلا دھار بارش ہونے لگی اور اس موسلا دھار بارش میں کسی نے دروازے پر دستک دی. اٹھ کر میں نے دروازہ کھولا تو ایک صاحب سر پر بوری اوڑھے دروازے کے باہر کھڑے تھے اور ان صاحب نے ایک تھال مجھے پکڑا دیا اور کہا ملا جی ہم نے منت مانی تھی، یہ مرغ پلاؤ ہے، برتن صبح آ جائیں گے. میں یہ مرغ پلاؤ لے کر فقیر کے پاس گیا اور تھال اسے پکڑا دیا اور اس نے خوب سیر ہو کر کھایا. ذرا یہ ایک واقعہ وہ شیخ صاحب کا تھا جس نے کھانے سے انکار کیا تھا اور اس کو اللہ نے زبردستی کھلایا لڈو، اور یہاں پہ یہ فقیر کہتا ہے اللہ سے میرا معاہدہ ہے. لفظ دیکھیں، میرا اللہ سے یہ معاہدہ ہے، یعنی کہ اللہ سے وہ بات بھی کرتے تھے اور اللہ سے اگریمنٹ کیا ہے کہ اگر مجھے مرغ پلاؤ کھلاؤ گے تو میں کھا لیا کروں گا، ادروائز آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، اور اللہ اس کی پوری کر رہا ہے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ، مچھلی مل جائے گی. حضور مرشد کریم بتا رہے ہیں کہ ایک رات کا ذکر ہے، تقریباً 11:30 بجے رات کا وقت تھا. قلندر بابا اولیا رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مچھلی مل جائے گی. میں نے عرض کی حضور 11:30 بجے میں کوشش کرتا ہوں، کسی ہوٹل میں ضرور مل جائے گی. قلندر بابا اولیا نے فرمایا ہوٹل کی پکی مچھلی میں نہیں کھاتا. میں 6:05 میں پڑ گیا کہ اس وقت کچی مچھلی کہاں سے ملے گی. اس زمانے میں ناظم آباد کی آبادی بہت ہی کم تھی. بہرحال میں نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ مچھلی ضرور تلاش کرنی چاہیے. یہ سوچ کر میں نے ٹوکری اٹھائی تو قلندر بابا اولیا نے فرمایا اب رہنے دو، صبح دیکھا جائے گا. ایک گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کسی نے دروازے پر دستک دی. باہر جا کر دیکھا تو ایک صاحب ہاتھ میں ایک مچھلی لیے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا میں ٹھٹھا سے آ رہا ہوں اور یہ مچھلی قلندر بابا رحمت اللہ علیہ کی نظر ہے، اور یہ کہتے ہی وہ صاحب رخصت ہو گئے. یعنی دیکھیے اللہ والے کے دل میں ख्याल भी अल्लाह ने डाला, उसका इजहार भी अल्लाह ने करवाया और फिर उसका इंतजाम भी अल्लाह ने किया। इस वाक्य से ये बात बताना मकसूद थी। अब इसी तरह अगला टॉपिक है परिंदों का रिज्क। बेशुमार वाक्यात पेश आने के नतीजे में ये यकीन मुस्तहकम और पुख्ता हो गया कि जरूरियात का वाहिद कफील अल्लाह है। अल्लाह ने वादा किया है कि मैं रज़ाक हूं। आप इस जुमले को नोट कर लें, अल्लाह ने वादा किया है कि मैं रज़ाक हूं, वो बहरहाल हमें रिज़क पहुंचाता है। यानी इस्तग़ना के लिए बुनियादी शर्त यह है कि हम इस बात को जहन में जागुजी कर लें, अपने अंदर अच्छी तरह बिठा लें कि अल्लाह राज़िक है, रिज़क अल्लाह ने देना है। उसकी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि देखे ना, अल्लाह ने मुझे अपनी किसी मकसद की तकमील के लिए तख्लीक किया। अल्लाह के पेशे नज़र कोई मकसद है, देखे ना, हर तख्लीक दो चीज़ों का मुरक्कब होती है, एक मकसद और दूसरे उसके तकाजे। अब हमारी ये बदबख्ती है कि हम मकसद की तरफ तवज्जो देने के बजाय अपने तकाजों पे इसरार करते हैं। अगर इस बात को हमें समझ आ जाए कि राजक होने का मतलब है वसाइल फराहम करने वाली जात, ताकि हमारे तकाजे पूरे हों, जब तकाजे पूरे करना अल्लाह ने अपने सर ले लिया तो मकसद पूरा करना किसके खाते में गया? जाहिर है वो मेरे खाते में आया। इसलिए इस बात को बड़ी तवज्जो से नोट करें। और अल्लाह के वो कारिंदे जो तकवीन के शोबे से वाबस्ता हैं, तकवीन के शोबे से वाबस्ता अफराद जिनके बारे में अल्लाह ने फिल अर्द खलीफा कहा है, इस बात पर कारबंद हैं कि वो मखलूक को जिंदा रखने के लिए वसाइल फराहम करें। अब महज जिंदा रखने के लिए वसाइल फराहम करें, गौर करें कि अगर वो बंदा जो मकसद के पीछे पड़ा हो उसको को वसाइल की कमी होने देंगे असाबे तकवीन जो है? देखिए, ये जो खलीफा फिलर्द है या फिलर्द खलीफा कहा गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। खलीफा किसे कहते हैं? खलीफा हम लोगों ने बनाया कि वो जो अल्लाह के इख्तियारात को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। नो, खलीफा उसे कहते हैं जो अपने बड़े की, अपने बॉस की, अपने कमांडर की बात को उस तरह समझता हो जिस तरह वो चाहता है। आप गौर करें, अगर आप किसी अफसर के मालिक हैं, आप किस बंदे को सेकंड इन कमांड बनाएंगे? जाहिर है उस बंदे को बनाएंगे जो आपकी बात समझता होगा। इंसान की तख्लीक का मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं है कि वो अल्लाह की बात को समझने में लग जाए, और जितना उसका जहन अल्लाह की बात को समझने में लग जाएगा और काबिल हो जाएगा कि वो अल्लाह की बात को समझता चला जाए, तो वो फिर अल्लाह को भी समझेगा। अल्लाह की बात को समझते समझते जब वो अल्लाह को समझने लगेगा तो अल्लाह क्या उसको अपने सिस्टम में दाखिल नहीं कर लेगा? ये जो नुक्ता है कि अल्लाह ने फिल अर्द खलीफा कहा है, इस बात पर कारबंद हैं, यानी वो पाबंद हैं कि मखलूक को जिंदा रखने के लिए वसाइल फराहम करें। और जिस बंदे का रब्त और ताल्लुक अल्लाह से कायम हो जाए उसको तो खास प्रोटोकॉल मिलता है, एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है उसको, क्योंकि वो बंदा अपने तकाजों की तकमील के बजाय अपने मकसद की तरफ मतवज्जो हो चुका है। अगला जुमला हजूर मुर्शिदे करीम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अजीब बात है कि अल्लाह अपनी मर्जी से पैदा करता है, जब तक वो चाहता है आदमी जिंदा रहता है, और जब वो नहीं चाहता तो आदमी एक सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन आदमी ये समझ रहा है कि मैं अपने इख्तियार से जिंदा हूँ और मुआशी सिलसिला मेरे इख्तियार से कायम है। इस बात को अगर आप कलंदर शऊर से आरास्ता होना चाहते हैं, इस बात को आप गिरह से बांध लें। हज़रत मुर्शिदे करीम एक मिसाल दे रहे हैं कि किसान जब खेती काटता है तो झाड़ू से एक एक दाना समेट लेता है, और जो दाने खराब होते हैं या घुन खाए हुए होते हैं उनको भी इकट्ठा करके जानवरों के आगे डाल देते हैं। जिस जमीन पर गंदम बालों से अलहदा करके साफ किया जाता है, वहां अगर आप तलाश करें तो मुश्किल से चंद दाने नजर आएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि अल्लाह की मखलूक परिंदे अरबों खरबों की तादाद में दाना चुगते हैं, तो ये मुहिमा हल नहीं होता कि किसान तो एक दाना नहीं छोड़ता। इन परिंदों के लिए कोई मखसूस काश्त भी नहीं होती, तो ये तो फिर ये परिंदे कहाँ से खाते हैं? ये हमारे शऊर को मतवज्जो किया है अल्लाह के निज़ाम में रिज्क की तरफ मतवज्जो करने के लिए। कानून ये है कि परिंदों का गौल जब ज़मीन पर इस इरादे से उतरता है कि हमें दाना चुगना है, तो इससे पहले कि उनके पंजे ज़मीन पर लगे, कुदरत वहाँ दाना पैदा कर देती है। अगर परिंदों की ग़िज़ा का दारो मदार किसान पर होता तो सारे परिंदे भूख से मर जाते। ये अल्लाह की रज़ाकियत की सिफत हर जानदार के लिए है। मैं आपकी तवज्जो ये दिला रहा हूँ कि इन जान रखने वाले लोगों में हमारा शुमार अगर उन लोगों में हो जाए जो अपने मकसद हयात की तरफ मतवज्जो हैं, तो रिज़्क की इस फराहमी के निज़ाम में प्रोटोकॉल शामिल हो जाता है, जैसे उस फकीर के लिए मुरख पुलाव आया। इससे अगला टॉपिक है दरख्त और घास। अब चौपाए बहरहाल इंसानों से बहुत बड़ी तादाद में ज़मीन पर मौजूद हैं। बज़ाहिर वो ज़मीन पर उगी हुई घास खाते हैं, दरख्तों के पत्ते चढ़ते हैं, लेकिन जिस मकदार में घास और दरख्तों के पत्ते खाते हैं, ज़मीन पर तो कोई दरख्त नहीं रहना चाहिए। कुदरत उनकी ग़िज़ाई कफालत पूरी करने के लिए इतनी बड़ी मकदार में दरख्त और घास पैदा करती है कि घास और पत्तों में कमी वाक़या नहीं होती। ये उन दरख्तों और घास का तज़किरा है जिनमें इंसान का कोई तसर्रुफ नहीं है। कुदरत अपनी मर्जी से उन्हें पैदा करती है और अपनी मर्जी से उन्हें सरसब्ज और शादाब रखती है। जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात अल्लाह बग़ैर किसी जिदोजहद और मेहनत के तकसीम करता है। जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात अल्लाह बग़ैर किसी जिदोजहद और मेहनत के तकसीम करता है। बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं? बुनियादी ज़रूरियात में सबसे अहम हवा, पानी, धूप, चांद की रोशनी शामिल है। अगर इंसान अपनी ज़रूरियात का ख़ुद कफ़ील है या अपनी ज़रूरियात में वो ख़ुद कफ़ील है, तो उसके पास ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा इल्म है कि वो धूप हासिल कर सके? ज़मीन के अंदर अगर पानी के सोते खुश्क हो जाएं, तो इंसान के पास ऐसा कौन सा इल्म या ताकत है कि वो ज़मीन के अंदर पानी की नहरें जारी कर दें? यही हाल हवा का है। हवा अगर बंद हो जाए अल्लाह का वो निजाम जो हवा को तख्लीक करता है और हवा को गर्दिश में रखता है, यानी ये पूरा एक निजाम है जिसके तहत हवा तख्लीक भी होती है और फिर हवा को गर्दिश में रखता है। हवा अगर ना चले कितने ही मसले खड़े हो जाए, अगर मुअत्तल हो जाए यानी अल्लाह का वो निजाम मुअत्तल हो जाए तो जमीन पर मौजूद अरबों खरबों मखलूक एक सेकंड के हजार में हिस्से में तबाह बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह की रजाकियत और वसाइल की तकसीम के सिलसिले में कलंदर गौस अली शाह से एक वाकया सुनिए। मजदूर बिरादरी एक शहर में कसाद बाजारी इस हद तक जा पहुंची कि वहां के बाजार वीरान हो गए। जब कारोबार चलने की सूरत सामने ना आई तो लोगों ने उस शहर से नकल मकानी करना शुरू कर दिया। इस कसाद बाजारी और नकल मकानी की वजह से शहर में रहने वाले गरीब मजदूर नहायत परेशान और बदहाल होने लगे। अभी इस मुसीबत का कोई हल सामने नहीं आया था और कोई बात ऐसी नहीं बन रही थी कि बाजार की वीरानी खत्म होकर दोबारा गहमा गहमी पैदा हो जाए। एक रोज दो सौदागर बाजार में आए और उन दोनों ने खरीदारी शुरू कर दी। हद ये कि सुई से हाथी तक हर चीज के दाम लग गए। इस खरीदारी के नतीजे में घोड़े खच्चर बैलगाड़ियां मजदूर हर शख्स मुतहरिक हो गया और उन दोनों सौदागरों ने ऐलान किया कि हम पूरे एक हफ्ते तक खरीदारी करेंगे और अपनी जरूरियात की फहरिस्त को इतना तवील कर दिया कि उस शहर के सौदागरों ने दिन रात की कोशिशों के बाद दूसरे शहरों से सामान की फराहमी का इंतजाम और बंदोबस्त किया। एक हफ्ते में ऐसा माहौल पैदा हो गया कि शहर में हमाहमी और गहमा गहमी पैदा हो गई। लोग खुशहाल हो गए, उनके चेहरों पर ताजगी आ गई। जो लोग नकल मकानी कर गए थे वो वापस आ गए और जिन लोगों ने नकल मकानी का इरादा कर लिया था उन्होंने इरादा मुलतवी कर दिया। मजदूर माला माल हो गए। इस्तराब बेचैनी अफलास और भूख का दौर दौरा खत्म हो गया। एक हफ्ते की खरीदारी के बाद सामान उठाने और जहाज पर चढ़ाने का मसला पेश आया। लोडिंग अनलोडिंग के सिलसिले में पूरी मजदूर बिरादरी मसरूफ कार हो गई और इस तरह उजड़ा हुआ शहर दोबारा बस गया। उन दोनों सौदागरों के साथ एक बड़े मियां भी थे जो मेहनत मजदूरी के सिलसिले में उनके साथ लग गए थे। जब खरीदा हुआ सामान जहाज में रख दिया गया और सौदागरों ने उस बूढ़े मजदूर को रुख्सत किया तो बूढ़े मजदूर ने कहा, मैं तन्हा हूं, आप लोगों की खिदमत करता रहूंगा और इस तरह मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, आप मुझे अपने साथ ले चले। सौदागर और मजदूर जहाज में सवार हो गए। जहाज चलते चलते जब समुन्द्र के बीच में पहुंचा तो उन सौदागरों ने उस जहाज को समुन्द्र में डबो दिया और बूढ़े मजदूर से कहा, हम दोनों फरिश्ते हैं। चूंकि एक आबाद बस्ती कारोबार ना होने की वजह से बर्बाद हो रही थी, इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि ये बस्ती आबाद रहनी चाहिए। अल्लाह ने फरिश्तों को क्या हुक्म दिया कि ये बस्ती आबाद रहनी चाहिए। बाकी इंतजाम उन्होंने कैसे किया वो आपने पूरा वाक्या पढ़ा। आबाद रहनी चाहिए, बस्ती के आबाद रहने के पीछे क्या हिकमत है? ताकि मखलूक को रिज़क फराहम होता रहे। और ये कहकर वो दोनों फरिश्ते गायब हो। क्यों जी, यहां रुक जाएं?
ठीक है सर।
कोई सवाल? जी भाई
जी, इसको शहर की जाविये से ले रहे होते हैं, वो भी अल्लाह का एक निजाम का एक हिस्सा है।
किस जाविये से?
शहर को हम जिस शहर को तकरीब के जाविये से ले रहे होते हैं, वो भी अल्लाह के निजाम का हिस्सा है।
जी हाँ, अल्लाह जी देखे ना, आप ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? कि खैर और शर सब अल्लाह की तरफ से। खैर और शर असल में क्या है? इस किताब में भी आपने पढ़ा, कोई अमल अच्छा या बुरा नहीं होता। असल में किसी चीज की मिकदार का मेरी सकत और सलाहियत से ज्यादा होना उसको शर कहलाता है। देखे ना, यही पानी जो एक गिलास पानी मुझे सैराब कर रहा है, अगर मैं एक नौजायदा पौधे के ऊपर उसे 4 फुट की बुलंदी से धार मार बांध के उसके ऊपर गिराऊंगा तो वो पानी उसके लिए शर बन गया।
बिल्कुल।
यानी पानी बजाते खुद ना खैर है ना शर है, उसका इस्तेमाल खैर और शर है। इसी तरह आग की मिसाल आपने पढ़ी कि अगर आप उसे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो खैर है, और अगर आप उसे किसी का घर जलाने के लिए, किसी बंदे को जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उसका शर है। तो अल्लाह के निजाम में पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना, वो दोनों साथ साथ चलेगा। वरना तो देखे ना, अगर बिजली की दो तारे ना हो, ना पॉजिटिव नेगेटिव ना हो, तो बल्ब रोशन होगा?
इम्पॉसिबल।
बस इसी तरह अल्लाह का निजाम जो है वो दोनों ताकतों पे चलता है, लेकिन आपकी नियत में क्या है असल चीज ये होती है। ठीक हो गया जी?
ठीक हो गया।
और कोई सवाल?
सर,
जी
सवाल।
जी जी, इरशाद इरशाद।
सर, ये जो दो शख्सियात के बारे में जानना चाहूंगी कि एक तो वो था जो उससे पहले गुजरा जिसने नहीं खाना था, और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एक फकीर आया, मतलब ये जो अभी उसने पढ़ा वो भी नहीं खाना चाहता, तो उसका फर्क समझना चाहती हूँ कि वो भी नहीं
बहुत
था।
बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत शुक्रिया। देखे, पहला बंदा मस्ती कर रहा था, लेकिन निजाम से टकरा रहा था, ठीक है। दूसरे बंदे की अल्लाह से दोस्ती थी, वो अल्लाह के निजाम को समझता था। उसने अल्लाह से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुर्ग पुलाव खाऊं, बाकी मर्जी तेरी, अगर नहीं खिलाएगा तो मैं नहीं खाता। गौर करें, दोनों में जो फर्क है वो वाज़े हो गया। एक अल्लाह के सिस्टम के खिलाफ चला, खिलाया अल्लाह ने उसको भी, जो अल्लाह के सिस्टम के साथ चला खिला उसको भी रहा है। फर्क प्रोटोकॉल का है, उसको मार मार के खिलाया और दूसरे को बरसती बारिश में, यानी बजाहिर कोई हालात ही नहीं थे, किस तरह से उनके दिल में डाला गया ख्याल के भी मुर्ग पुलाव पका के मस्जिद में दे के आओ। गौर करें। तो ये सब निजाम अल्लाह चला रहा है। हम लोग जब ये समझ लेंगे और निजाम पे यानी सिस्टम पे गौर करना सीख लेंगे तो बताइए किसका भला करेंगे? अल्लाह खुश रखे आपको जी, और अल्लाह करे कि आप अपना भला करने पे तुल जाएं। जी सर, वेलकम
सर। ये अल्लाह ने वादा किया है रिजक का, उसे रिजक देना ही देना है, हर सूरत राजक है
बेशक।
तो हमें फिर कोई ये नौकरियां कारोबार करने की क्या जरूरत है?
हाँ हाँ हाँ, हमें जरूरत इसलिए है कि अल्लाह ने आपको हाथ पैर भी दिए इस्तेमाल करने के लिए, पूरी बस्ती का निजाम चलाने के लिए। गौर करें, देखे ना, आपके यकीन का ये पैटर्न बन जाए और आप हाथ पैरों से वैसे ही काम लें जैसे अल्लाह चाहता है। अब ये तो नहीं ना कि आप घर में चारपाई पे लेट जाएं लंबे और कहें जी अब कई लोगों को हमने देखा है, ये मुशाहिदा हुआ मुझे। एक साहब थे, जब मैं सिलसिले में आया तो वो बहुत एक्टिव थे, लेकिन बहरहाल वो उनकी परेशानियां थी अपनी, तो फालज हो गया उनको। तो हजूर मुर्शिद करीम के साथ मुझे वहां जाने की सआदत मिली। तो मैंने ये देखा कि रिजक तो उनको तब भी मिल रहा जबकि वो फालज ज्यादा हो गए। असल चीज ये थी कि उनके जहन में परेशानी बहुत थी कि जी मैं करूंगा नहीं तो खाऊंगा कहाँ से, करूंगा नहीं तो खाऊंगा कहाँ से। अल्लाह ने उनको मुशाहिदा करा दिया, बल्कि अमली तजर्बे से गुजार दिया कि भाई अब फालज हो गया, अब तुम क्या कर सकते हो, उठ के पेशाब तो कर नहीं सकते। ये मिसालें आपके और मेरे सामने हैं ना। हमें हाथ पैरों को इसलिए चलाना है कि अल्लाह ने इनको चलाने का हुक्म दिया है, हमें मेहनत और जिद्दोजहद करने का हुक्म है। हमें अपने मकसद के लिए तख्लीक है तो उसे समझेंगे तो उसके मुताबिक अगर हाथ पैर चलाएंगे। अब बच्चों की कफालत करना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपकी जिम्मेदारी है, रिजक अल्लाह ने देना है, लेकिन कफालत आपको कफील बनाया। इस थोड़े से फर्क को थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अल्लाह चाहता है इंसान हरकत में रहे। देखे सारा कायनाती निजाम हरकत पे है। अगर आप इस बहाने कि जी रिजक तो अल्लाह ने देना है, तो क्या आप सिर्फ रिजक खाने आए हुए हैं? तो हरकत किसने करनी है? आप कोई भी हरकत करें, देखे ना बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक ही हरकत कर रहे हैं, क्या कि वो पढ़ रहे हैं। उनके अम्मा बाप को लगाया हुआ है कि वो उसको रिजक की फराहमी के लिए वसाइल मतलब है कि कारकुन बना दिया उसमें, हाँ या नहीं? देखे ना आपके जिम्मे जो फराइज हैं, ये हमारी सारी सोच कहाँ गड़बड़ हुई कि हमें हकूक के चक्कर में डाल दिया गया, फराइज हम भूले हुए। अगर हम अपने फराइज में हम आग पैदा करने की तरफ मतवज हो जाए तो वसाइल की फराहमी अल्लाह ने अपने सर ली हुई। आप वसाइल के लिए कोशा ना हो, मकासद के लिए कोशा हो, ये सबक है। कोशा होने से नहीं आप रुक सकते, आपको कोशिश और जिद्दोजहद करनी ही करनी है, लेकिन सिर्फ सिमत का फर्क है कि आप वसाइल के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये बेसिकली गलत है, आप मकासद के लिए कोशिश करें। ये कहा जा रहा है कलंदर शौर की, ठीक हो गया
जी सर?
चले बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल? असल में देखे ना अल्लाह का निजाम चलता है जहन से। ये वो लोग होते हैं जो आपके थॉट्स को ट्रैफिकिंग करते हैं, यानी कि हमारे जो ख्यालात चल रहे होते हैं उनकी ट्रैफिकिंग कर रहे होते हैं। जैसे पुलिस का संतरी ट्रैफिक को रास्ता देता है और उसके बहाव को कंट्रोल करता है, ये असहाबे तकवीन जो होते हैं ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह के वो मुकर्रब बंदे होते हैं जिनको अल्लाह अपने निज़ाम में, यानी देखे ना हम तो जिस्मानी सतह पे हैं, जब वो ज़हनी सतह पे फिक्री सतह से ऊपर उठ के रूहानी सतह में दाखिल हो जाते हैं, जाहिर है फिर अल्लाह उनको किसी ना किसी काम से तो लगाएगा। तो वो काम जो उनको बराह रास्त अल्लाह सुपुर्द करे उसको तकवीन कहते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम चल रहा है, फिलहाल तो हमें एक अच्छा इंसान बनना है, आदमियत से ऊपर उठ के इंसानियत के जोन में आना है। जब कलंदर शौर से आरास्ता होकर आप आदमियत से उठकर इंसानियत में दाखिल हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा जब आप इंसानियत से ऊपर उठ के आदम के अलूम से आशना हो के अल्लाह के नायब बन जाएंगे। दर्जा बंदी है ना, तो ये असाबे तकवीन ही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने खलीफतुल अर्द की इस्तला इस्तेमाल की है, क्योंकि वो अल्लाह को जानते हैं, वो अल्लाह को समझते हैं, तो अल्लाह उनको कुछ कहता है तो वो फिर उसकी बात पे उसी तरह अमल करते हैं जिस तरह अल्लाह उनसे करवा रहा है। अब वैसे मेरी सोच ये है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि हर बच्चा, हर औरत जब वो माँ बनती है तो क्या कर रही है, वो तकवीन के निज़ाम का हिस्सा ही तो बन गई, वो बच्चे की लुकाफ्टर कर रही है कि नहीं कर रही। इसी तरह हर लड़का शौहर बनने के बाद जब बाप बनता है तो क्या कर रहा है, वो एक घर का निज़ाम चलाने के लिए ही तो एक कारकुन बना है। हमारे यहाँ अपने फराइज में नहमाक के बजाय वो आपस में हकूक का बाजा बजता है और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने शुरू हो जाते हैं। सोच ही गलत हो गई। ठीक हो गया जी, चले खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।